एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक अमिताव घोष और उनके बहुत ही चर्चित उपन्यास सी ऑफ पॉपीज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं।
हाँ, अमिताव घोष, उनका नाम ही काफी है। सिर्फ कहानीकार नहीं बल्कि उनका जो अकादमिक नजरिया है।
बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड से सामाजिक नृपविज्ञान में PhD, और ये चीजें उनके लेखन में दिखती हैं, है ना? इतिहास और इंसान दोनों को साथ लेकर चलते हैं वो।
सही कहा, हिंद महासागर, एशिया, अफ्रीका, मतलब एक बहुत बड़ा कैनवास है उनका। और वो बड़ी बड़ी बातें जैसे उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण, इनको आम लोगों की कहानियों से जोड़ते हैं।
हाँ, और उनकी भाषा कमाल की है, कई परतें, कई बोलियां, ऐसा लगता है जैसे पूरा इतिहास बोल रहा हो।
और सी ऑफ पॉपीज, ये 2008 में आई आइबिस त्रय की पहली किताब, बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुई थी।
जी, कहानी का समय है 1838, पहला अफीम युद्ध बस होने ही वाला है। और मुद्दा क्या है? अफीम। कैसे इस अफीम के व्यापार ने अलग अलग लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ, वो गिरमिटिया मजदूरों की कहानी, अक्सर भुलाई हुई कहानी है ये। और कैसे ये पूरा सिस्टम, ये उपनिवेशवाद की मशीनरी लोगों को पीस रही थी।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास की जो जटिलता है, जो पात्रों का सफर है, उसको थोड़ा खोलें, समझें, इसके जो मुख्य विषय हैं उन पर बात करें।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं इस अफीम के सागर की यात्रा। जमीन से शुरू करते हैं, है ना?
हाँ, साल 1838, गंगा का मैदान। ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों को मजबूर कर रही है अनाज नहीं अफीम उगाओ, और ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसने पूरा इलाका बदल दिया। घोष ने से क्या खूब कहा है, अफीम का सागर।
नाम तो सुंदर है, अफीम का सागर, लेकिन असल में ये बर्बादी का सागर था, शोषण, लत।
और इसी माहौल में कहानी का केंद्र बनता है एक जहाज, इबिस।
इबिस, हाँ, ये भी कोई सीधा साधा जहाज नहीं, इसका अपना इतिहास है, पहले गुलाम ढोता था।
सोचिए जरा, और अब इसमें है गिरमिटिया मजदूर जिन्हें मॉरिशस भेजा जा रहा है, और साथ में चीन के लिए अफीम, एक ही जहाज पर दो तरह की कैद।
यहीं से वो संघर्ष शुरू होता है ना। पात्र सिर्फ अपनी मुश्किलों से नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं पूरे सिस्टम से, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, जाति।
हाँ, और सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो, घर, पहचान, रिश्ते, तो क्या कुछ नया बनाना मुमकिन है? क्या कोई उम्मीद है?
और ये सवाल किरदारों की जिंदगी में जहाज पर आने से पहले ही मौजूद है। जैसे जैसे दीति को लें, ऊंची जाति की महिला, बिहार के गांव में,
पति अफीम का आदि, फैक्ट्री मजदूर।
बिल्कुल, और जब पति मरता है तो उस पर सती होने का दबाव, भयानक स्थिति।
हाँ, बहुत भयानक।
लेकिन वो भाग निकलती है कलुआ की मदद से। कलुआ नीची जाति का, ताकतवर लेकिन शांत, और दीति के लिए पूरी तरह समर्पित।
खिलाफ एक सम्मानित पत्नी से भगोड़ी बनना,
पहचान बदल गई
पूरी तरह, और कलुआ के साथ उसका रिश्ता, ये तो हर नियम को तोड़ता है। यहीं से पहचान बदलने लगती है।
फिर दूसरे सिरे पर है राजा नील रतन हल्दर।
हाँ, राजा नील, कलकत्ता के रईस जमींदार, पढ़े लिखे, शानो शौकत वाले।
लेकिन उनकी दुनिया भी पलट जाती है।
एक अंग्रेज व्यापारी बेंजामिन बर्नहम, वो उन्हें जालसाजी में फंसा देता है,
झूठा मुकदमा,
और नील का सब कुछ चला जाता है, पैसा, इज्जत, जमींदारी, यहाँ तक कि जाति भी,
और सजा,
काला पानी, देश निकाला एक आम कैदी की तरह।
ये दिखाता है कि वो सिस्टम कितना बेरहम था, किसी की भी पहचान को मिटा सकता था।
बिल्कुल। फिर एक और किरदार है, ज़ैचरी रीड।
हाँ, ज़ैचरी, अमेरिकी नाविक जिसके खून में थोड़ी मिलावट है, एक चौथाई अश्वेत,
और वो दिखावा करता है गोरा होने का। बहुत महत्वाकांक्षी है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हमेशा फंसा रहता है, सही क्या है, गलत क्या है। उसका झुकाव बर्नहम की पत्नी की तरफ भी है, और इबिस पर उसे सेकंड मेट का पद मिलता है। ताकत तो मिलती है, पर साथ में नैतिक सवाल भी।
हाँ, नस्ल, पहचान, मौका, ये सब उसकी कहानी में है।
और आखिर में पॉलेट लैम्बर्ट।
पॉलेट, फ्रांसीसी पिता की बेटी, पर पली बड़ी हिंदुस्तान में, भोजपुरी भी बोलती है, फ्रेंच भी,
दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई।
बिल्कुल, और जब जबरदस्ती शादी तय होती है तो वो भागने का फैसला करती है, हिंदुस्तानी औरत का भेष धरकर, अपने बचपन के दोस्त जोदू की मदद से, इबिस पर।
तो ये सब किरदार अपनी अपनी कहानियों के साथ, जमीन से नदी, नदी से समुंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ सफर नहीं है, ये अपने अतीत से कटना है।
हाँ, एक अनजाने भविष्य की तरफ। और सबका डेस्टिनेशन है इबिस।
और ये इबिस जहाज, जैसा आपने कहा, इसका इतिहास ही इसकी कहानी कहता है। पहले गुलाम, अब गिरमिटिया और कैदी, पुरानी और नई गुलामी एक ही जगह।
ये जहाज खुद में एक दुनिया बन जाता है, साम्राज्य का छोटा सा मॉडल, वही ऊंच नीच, वही शोषण।
लेकिन शायद यहाँ कुछ नया बनने की भी जगह है। पुरानी पहचानें टूट रही हैं, तो क्या नई बन सकती हैं? एक प्रयोगशाला जैसा।
सही कहा। और हम देखते हैं कि कैसे ये सब किरदार इस जहाज तक पहुंचते हैं। दीति और कलवा समाज से भागकर एक धुंधली सी उम्मीद के साथ गिरमिटिया मजदूरों के झुंड में शामिल हो जाते हैं।
नील राजा से कैदी बनकर, सब कुछ खोकर, जेल से सीधा जहाज पर।
पॉलेट भेज बदलकर, बर्नहैम के एक कर्मचारी की रिश्तेदार बनकर, आंखों में आजादी का सपना।
और ज़ेचरी सेकंड मेट, जहाज तैयार करवा रहा है लेकिन अपने नए औहदे की कड़वी सच्चाई देख रहा है, नैतिक दुविधा में फंसा हुआ।
जहाज पर जिंदगी मतलब बहुत ही भयानक थी, एकदम सख्त बंटवारा, ऊपर गोरे अफसर,
फिर लश्कर यानी हिंदुस्तानी नाविक,
हाँ, फिर कैदी, और सबसे नीचे डेक के अंदर ठूंसे हुए गिरमिटिया मजदूर, जानवरों की तरह।
हालात बहुत बुरे थे, गंदगी, बीमारी,
बिल्कुल एक तैरता हुआ पिंजरा समझिए। लेकिन इसी घुटन में कुछ नया भी होता है।
हाँ, वो रिश्ते।
गिरमिटिया मजदूरों के लिए काला पानी पार करना मतलब जाति खो देना था, पर यहाँ उसी साझा दुख से एक नई पहचान बनती है, जहाज भाई, जहाज बहन।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, जाति धर्म भूलकर एक नया समुदाय, बराबरी पर आधारित।
हाँ, और दीति अपने स्वभाव से उनकी नेता जैसी बन जाती है।
उधर नील, वो भी धीरे धीरे अपनी शर्म से बाहर आते हैं, साथी कैदियों से दोस्ती करते हैं, खासकर फत से।
फत जो आधा चीनी आधा पारसी है, अफीमची।
पॉलेट भेष में सब देख रही है, जहाज का ताना बाना समझ रही है और ज़ेचरी की तरफ आकर्षित होती है।
और ज़ेचरी, उसका संघर्ष तो चल ही रहा है अधिकार और जमीर के बीच, मजदूरों पर जुल्म देखता है तो परेशान होता है। फर्स्ट मेट मिस्टर क्राउल से उसकी बनती नहीं।
कहानी में विलन सिर्फ लोग नहीं है, पूरी व्यवस्था है, पर दो चेहरे उभर कर आते हैं, एक तो मिस्टर बेंजामिन बर्नहैम।
हाँ, बर्नहैम इबिस का मालिक, जिसने नील को फंसाया था, ऊपर से बड़ा धार्मिक, अंदर से
अफीम का व्यापारी, जिससे हिंदुस्तान और चीन दोनों बर्बाद हो रहे थे, वो इस सिस्टम का प्रतीक है।
बिल्कुल।
और दूसरा है सिरांग अली। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प किरदार है, लश्करों का मुखिया, रहस्यमयी, ताकतवर,
अपने आदमी पर पूरा कंट्रोल। उसका अतीत भी शायद जहाज के पुराने दिनों से जुड़ा है, वो अंग्रेजी राज के नीचे काम करते हुए भी अपनी सत्ता चलाता है,
व्यवस्था के अंदर एक और व्यवस्था।
हाँ, और फिर आता है क्लाइमैक्स, काल बैशाखी, भयंकर तूफान,
जहाज हिल जाता है, समंदर का कहर।
ये सिर्फ मौसम का तूफान नहीं था, ये उस अंदरूनी तूफान का प्रतीक था जो जहाज पर पल रहा था।
और इसी अफरा तफरी में
बगावत,
हाँ, सिरांग अली के नेतृत्व में नील, फत, जोदू, कुछ कैदी और लश्कर मिलकर जहाज की एक नाव पर कब्जा कर लेते हैं।
बहुत तनाव भरा सीन होगा वो,
जबरदस्त। और वो भाग निकलते हैं इबिस से, लेकिन
कहानी वहां खत्म नहीं होती। नहीं, दीति, कलुआ और कुछ दूसरे मजदूर भी आखिरी पल में उस नाव पर आ जाते हैं, और उपन्यास हमें छोड़ देता है एक ऐसी जगह जहां सांस रुक जाती है,
भगोड़ों का एक छोटा सा गुट, एक छोटी सी नाव पर, खुले समंदर में।
आजाद तो हैं, पर आगे क्या कुछ पता नहीं, उनकी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है।
ये कहानी मतलब सोचने पर मजबूर करती है, कई सारे विषयों को छूती है। सबसे पहले तो ये उपनिवेशवाद और उसका आर्थिक शोषण।
हाँ, घोष उसे किसी मसीहा की तरह नहीं दिखाते, एक बेरहम आर्थिक मशीन की तरह दिखाते हैं। अफीम का सागर ये दिखाता है कैसे मुनाफे के लिए सब कुछ रौंद दिया गया।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है पहचान का सवाल, सब कुछ छिन जाने के बाद इंसान क्या है? काला पानी पार करना एक तरह की सामाजिक मौत।
लेकिन फिर उसी राख से नई पहचान बनती भी है, जहाज भाई का रिश्ता, पहचान बदलती रहती है ना, वो कोई ठूसी हुई चीज नहीं है।
सही बात है। और जाति व्यवस्था, वो तो कहानी में हर जगह है, हिंदुस्तान में उसकी पकड़।
लेकिन जहाज पर वो कुछ हद तक टूटती भी है। जहाज भाई बनना ये पुरानी दीवारों को तोड़ने जैसा है, हालांकि वहां भी एक नई ऊंच नीच बन जाती है।
हाँ, पर पुरानी जाति वाली पकड़ कमजोर पड़ जाती है।
और इन सब बदलावों को पकड़ने का जरिया है भाषा। घोष का भाषा पर कमाल का नियंत्रण है। अंग्रेजी, भोजपुरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और वो आई बिस्पीक,
वो मिलीजुली जबान।
हाँ, वो खिचड़ी भाषा। वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो प्रतीक है उस नई मिलीजुली संस्कृति का जो वहां बन रही थी।
बहुत खूब। और आखिर में किस्मत और इंसान की कोशिश, ये सवाल भी है।
हाँ, कई बार लगता है कि ये सब बस बह रहे हैं इलाज की धारा में। बड़े लोग फैसले लेते हैं, इनकी जिंदगी बदल जाती है,
लेकिन वो आखिरी बगावत, वो भाग निकलना, वो दिखाता है कि इंसान हार नहीं मानता।
बिल्कुल, गुलामी से बेहतर है मौत का खतरा उठाना। वो अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
घोष की कहानी कहने का तरीका भी, वो बहुस्तरीय कथन।
हाँ, एक साथ कई आवाजें, इससे हमें पूरी तस्वीर मिलती है ज्यादा गहराई से।
और प्रतीक, इबिस जहाज, अफीम का सागर, काला पानी, ये सब सिर्फ चीजें नहीं है, इनके गहरे मतलब हैं।
भाषा की समृद्धि, वो तस्वीरें जो वो शब्दों से बनाते हैं, अफीम के खेत, कलकत्ता, जहाज का डेक, तूफान, ऐसा लगता है हम वही हैं।
हाँ, कुछ चीजें दिमाग में रह जाती हैं, जैसे वो अफीम की नदी का ऊपर की ओर बहना, कितना सटीक है ये प्रकृति के खिलाफ शोषण।
या गिरमिटिया मजदूरों का नामहीन प्रेत होना, अमानवीकरण भी और नए सिरे से बनने की संभावना भी।
और सबसे ज्यादा शायद वो जहाज भाई का विचार, साझा दुख से पैदा हुई बराबरी।
हाँ, कि मुश्किल हालात में भी इंसानियत रास्ते खोज लेती है, नए रिश्ते बना लेती है। वो जहाज सचमुच एक अलग दुनिया थी।
तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज की दुनिया की नींव में कितना कुछ छुपाए, हिंसा, जटिलता और उसी में इंसान की गरिमा और जुड़ाव की तलाश।
और इसीलिए ये आज भी मायने रखती है। विस्थापन, शोषण, पहचान का संकट, ये सब आज भी हैं, अलग रूपों में। उम्मीद की तलाश आज भी जारी है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।